3 सेकंड तक खुद को एहसास दिलाएं कि मैं कहाँ बैठी हूँ। फिर दिल के अंदर शुक्र का जज्बा लेकर शुरू करते हैं, इस सोच के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें इसका मौका दिया। बराह रास्त आयतों पर जाने से पहले हम सबक का खुलासा देखेंगे। बहुत ही अहम आयात सूरत नाहल की हमारे आज के सबक में। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि घर कैसे होने चाहिए, घर की वजह तासीस क्या है, यानी बुनियादी मकसद घरों का क्या है। फिर अगली चीज, अगला मजमून आज का, नेमत को पहचान कर उसकी नाकदरी करने की सजा क्या मिलती है, इसको देखेंगे। फिर अगली चीज है शिर्क के नाम पर जिंदगियां जाया करने वाले कल क्यामत के दिन वो लोग उनसे क्या मामला करेंगे जिनको ये अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे। फिर क्यामत के दिन की गवाही की शिद्दत, और उसके बाद फिर मारूफ आयत 19 जो जुमे के खुतबे में भी पढ़ी जाती है, दीन इस्लाम का खुलासा कि अदल, एहसान और इताए ज़िल क़ुरबा, इनका रब्त और इनकी खैर क्या है, और फुखश, मुनकर और बगी, कैसे ये किसी भी सोसाइटी के नासूर बनते हैं। और आखिरी टॉपिक फिर हम देखेंगे वादा शिकनी की सजा, औकात रह जाती है। शुरू की आयतें बहुत ही कम वजाहत तलब हैं, लेकिन सबक की आखिरी आयतें बहुत तलब वाली हैं, इसलिए हम इंशाल्लाह इनको शुरू वाले मौजू में जो बातें अब दोहराई जा रही हैं उसको ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे कि वो बात जो नई आई है उसको समझें। चलते हैं आयतों के साथ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 80 से। अल्लाह सुबहान तला इन आयात में वही बात जो पीछे कई बार गुजर चुकी उसी को दोहरा के अपनी नेमतों का इशार करवाते हैं। और इन आयात को सुनने से पहले जहन में रखिए कि सूरत नहल सूरत नेम भी है। पीछे हमने अभी तक जितनी सूरत पढ़ी उसके अंदर बहुत सारी नेमतों को देखा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम नेमत समझते हैं, और कुछ को तो इंसान नेमत समझता भी नहीं, इतना यूज्ड टू हो जाता है कुछ चीजों का कि कहता है कि ये तो बस होना ही था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये होना ही नहीं था, ये हमने किया है। जहां तुम्हें जानवर दिए, शहद की मक्खियों से शहद बनवा दिया, जानवरों के पेटों से दूध निकलवा के पिला दिया, जहां तुम्हारे लिए हमने सूरज चांद सितारों को अपनी गुलामी में लिया, वहां अब एक ऐसी नेमत जो अमीर हो के गरीब, छोटा हो के बड़ा, लेकिन हर एक की वो नेमत हकीकत में इतनी बड़ी नेमत होती है कि जिसका अंदाजा तब लगाया जा सकता है कि जिसके पास ये नेमत ना हो, और वो नेमत है घरों की नेमत। अरब लोग खेमों में रहते थे, पक्के मट्टियों के चूनों के घर उनके नहीं होते थे। अल्लाह ताला ने उनसे जो काम लेना था, हकीकत है कि वो हल्के घरों में रहकर ही होता है, तो उन्हीं घरों के हल्केपन की तरफ इशारा करके अल्लाह सुब्हानहु ताला फरमाते हैं, औसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 80। वल्लाहु जाअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, या नंबर 1 लगा लीजिए, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए घरों को जाय सुकून बनाया। फिर दूसरी नेमत उसकी इसी आयत में, वजाअल लकुम मिन जुलूदिल अनामि बुयूतन, तुम्हारे लिए जानवरों की खालों के इस घर बनवाए। कैसे हैं वो घर जिनको तुम तस्तखिफूनहा यौम ज़ानिकुम व यौम अकामतिकुम, जिनको तुम हल्का पाते हो सफर और क्याम दोनों की हालतों में। टेंट्स की तरफ इशारा, टेंट कह लीजिए आज के दौर में उसको, खेमा कह लीजिए आज के दौर में इसका कोई भी नाम ले लीजिए, लेकिन अरबों के घर बहुत हल्के फुल्के होते थे, जानवरों की जो चमड़ी होती है उससे बनाते थे। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्योर लेदर की खूबी क्या है कि ये मौसम की शिद्दतों का मुकाबला कर सकता है। सहराओं में शिद्दत की सर्दी भी होती है और शिद्दत की गर्मी भी होती है, तो आम हमारे मिट्टी चूने के अगर घर होते तो वहां तो एसीस भी चाहिए थे और हीटर्स भी चाहिए थे, तो वहां जहाँ के बिजली नहीं कुछ नहीं है तो वहां ये कहाँ होता। तो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे उनके घर कैसे बना दिए कि उनको घर पतले पतले छोटे लाइट वेटेड घर दे दिए। किस चीज से वो घर बनाते थे अमूमन? वमिन अस्वाफिहा वाउबारिहा वशआरिहा असासम व मतान इलाहीन। और इसने बनाया तुम्हारे लिए इन भेड़ों की ऊन से और इन ऊंटों और बकरियों के बालों से सामान और बरतने की चीजें खास वक्त तक के लिए तुम्हें अता की। यानी उनके घरों में जो नीचे रग्स होती आज भी बहुत महंगी मिलती हैं, इस किस्म की रग्स जिसको प्योर लेदर यानी जिसके ऊपर फर होती है उससे बनाया जाता है। तो ये खेमे चमड़ों की खालों से बना लेते थे और घर में बैठने और जैसे सोफा कह लीजिए सोने के लिए नीचे जो जगह होती थी वो इन जानवरों की चीजों से बनाते हैं। पीछे आयत नंबर 5 में हमने इन्हीं जानवरों की खूबी से क्या देखा था कि दिफ़ुल्लकुम सर्दी से शिद्दत से बचने के लिए कपड़ा तैयार करने की तरफ इशारा था। तो मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जानवरों की खालों में कुदरती तौर पे गर्मी सर्दी का इंतजाम किया है। तुम इनसे कपड़े भी बुनते हो, फायदे की चीजें भी बनाते हो। और आज भी हम जानते हैं कि एक जमाना हुआ एक मुद्दत गुजरी कि इंसान के पास कपड़ा बनाने के लिए जानवरों से हासिल होने वाले इस रेशे के सिवा कोई और चीज नहीं होती थी। ये सिंथेटिक और प्लास्टिक और ये सब कुछ तो बात की बात है। कपास की दरियाफ्त बहुत बाद में हुई, आज मस्नूई चीजें मौजूद है, लेकिन आज भी कुदरती चीजों को हम सामने रखें तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अब इस एक आयत को अगर हम अरबों के तनाजर से निकालकर जरा अपने ऊपर लेके सोचें तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि घर सुकून की जगह, पहली नेमत जो अल्लाह ने दी यहां कह के वो घर तुम्हारे लिए सुकून का जरिया है। याद रखिए जिसको घर में सुकून नहीं मिलता फिर वो शराब खाने में सुकून ढूंढता है, फिर वो जिना खाने में सुकून ढूंढता है और या फिर आखिर में आके हॉस्पिटल्स और साइकेट्रिस्ट के पास आकर सुकून ढूंढता है। आज वेस्ट का सिस्टम जो परेशान है ना उसकी वजह यह है कि घरों में सुकून नहीं है। आप कह लें कि वेस्टर्न माहौल के सुकून प्रोड्यूस इदारे जिसको घर कहते हैं उसमें चूंकि सुकून नहीं है, शौहर को बीवी से सुकून मिलना था, बीवी को शौहर से मिलना था, तो माहौल ऐसा बन गया कि दोनों ही बेवफा हो गए। मुफाद का रिश्ता बना, लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट सेकंड साइट वाली कैफियत हुई तो उनको सुकून ना मिला। मर्दों ने बाहर जाके सुकून ढूंढा, औरतों ने भी अपने लिए कुछ और चीजें ढूंढ ली। इसी तरह घर में सुकून मिलता है बच्चों को माँ बाप से। जिस बच्चे को माँ की गोद मिल जाती है वो कितना ही क्यों ना दुखी हो, भूखा हो, कितना ही क्यों ना हो, लेकिन वो सुकून पाता है। लेकिन जिस बच्चे को बचपन से मां ना मिली उसका क्या होगा? आप कहेंगे कि ये बातें शायद सिर्फ जज्बाती जुमले हैं। चंद दिन पहले मुझसे किसी एक सिस्टर ने शेयर किया जो बेबी सिटिंग करती हैं और जो आपको पता है कि यहाँ पे फॉस्टरिंग होती है, इतनी खूबसूरत बच्ची है उनके पास और वो कहती है कि इसके माँ बाप इसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। यानी वो इतनी हसीन बच्ची है कि अगर अभी यहाँ आए ना तो आप सबकी नजरें उस पर जम जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए आप। हसीन और जमील और वो एज जिसमें बच्चा कुलकारियां मारता है। कहती वो बच्चा जाती है तो 4 घंटे की मुलाकात होती है तो 3 घंटे में वापस आ जाती है। माँ नहीं पसंद करती उसको क्योंकि माँ ड्रग है, वो नशा करती है। वो जाती भी है तो उधर से वो परेशान हो, कहती मैं नहीं इसको संभाल सकती। तो जब और माँ बाप भी शायद अलग है, ये कहाँ से रिश्तों में सुकून आएगा? जो इस तरह के माहौल से बच्चे पैदा होते हैं क्या बताइए कि वो एक सेहतमंद नस्ल बन सकती है? बाप के पास ले जाओ तो बाप गवर्नमेंट कह रही है बाप को कि तुम ले लो, वो कहती नहीं, कहते मेरे पास बड़े कम मसले हैं, मुझे अपना मॉर्गेज देना है, मुझे घर की किस्तें देनी है, मेरे पास बहुत बहुत खर्चे हैं, मैं इस बच्ची को अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने कहा शुक्र करे वो नहीं ले रहे, आप ले रहे, हम ले लेते हैं ऐसे बच्चों को, तुम हाथों में ले लें, लेकिन नहीं ले रहे। क्या वजह? कि बच्चों में खुशी नहीं है। ह्यूमन राइट्स के नाम पे एक औरत जो वेस्ट में बड़ी फेमस है, जानवरों और एनिमल राइट्स पे वो बात करती है और जब वो खुद प्रेग्नेंट हुई तो कहती थी आई फील आई हैव अ मॉन्स्टर इन माई पेट, यानी मुझे लगता है मेरे पेट में कोई जिन्न है। बेचैन हो जाती थी अपने बच्चे को उसने निकाल दिया, यानी बच्चा पैदा हुआ उसको बात का कहीं ले जाए, मैं इसका रोना नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं इसकी खिदमत नहीं करती। और बाहर फिरते हैं हम लोगों के लिए झंडे उठाकर ह्यूमन राइट्स के। तो बच्चों को माँ बाप से सुकून ना मिला। आप देखिए कि माँ बाप को भी तो बच्चों से सुकून मिलता है ना। आप में से जो छोटे बच्चों की माँ है वो तो खुद जानती होंगी कितना थकाते और कितना खपाते हैं बच्चे, लेकिन एक नजर उनके चेहरे पे, उनकी मासूम मुस्कुराहट, उनकी तोतली तोतली बातें, सारी थकन दूर हो जाती है। एक उनका जुमला, एक उनकी स्माइल, एक उनका ऐसा नजारा होता है कि इंसान को सुकून मिलता है। तो जिन सोसाइटीज में सुकून नहीं होता वहां फिर लोग बेसुकून होते हैं। तो हम सबका इसमें फर्ज है कि हम अपने घरों को पुरसकून बनाएं। याद रखिए कि घर का सुकून किसी एक बंदे से नहीं बनता, लेकिन सूरत रूम में अल्लाह ताला ने औरत को ये जिम्मेदारी दे दी कि वमिन आयात ही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनू इलैहा, गालिबन आयत 20 है सूरत रूम की, कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी हम जिन्स बीवियां पैदा की जिनसे तुम सुकून लो। तो माने ना माने लेकिन घर औरत से ही बनता है। वो कहते हैं ना कि है वजूद है जन से तस्वीर कायनात में रौनक, तो ये सच है। औरत घर में नहीं होती तो सुकून नहीं लगता, किसी का भी उस घर में दिल नहीं लगता। घर में माँ ना हो तो बच्चों का दिल नहीं लगता, घर में बीवी ना हो तो शोहर का दिल नहीं लगता। तो मर्द तो और किस्म की चीजों की जिम्मेदारी अल्लाह ने उन पर डाली है, लेकिन औरत का ज्यादा हाथ है सुकून में। आप देखिए कभी भी किसी का घर देखें तो क्या कभी सवाल उठा कि मिसाल है कि एक अमजद है और एक असमा है, तो कोई किसी के घर में एकदम जाए तो उस घर की डेकोरेशन, घर की सफाई, घर का सलीका या वहां का मैसीपन होने में कभी किसी के मुंह पर यह लफ्ज आया कि अमजद ने घर का क्या हाल बना लिया? क्या आता है? यस्मा ने घर का क्या बनाया? यस्मा का क्या हाल हुआ? औरत के साथ घर होता है, माने के ना माने। और जिस औरत का दिल अपने घर में नहीं लगता, जो अपने घर से ज्यादा बाहर महफिलों, पार्लर्स, ब्यूटिशियंस के पास और शॉपिंग खरीद के घरों को और मैसी करने में लगे, तो उन घरों में भी सुकून नहीं होता। तो हम चंद पॉइंट्स नोट करेंगे कि घर को मैं से पुरसकून बनाऊं। हालांकि इस पे हमने इस मौजू पे तो पूरी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सेमिनार्स तक किए हैं कि औरत मेरा घर मेरा जन्नत मेरा होम स्वीट होम, लेकिन जाहिर है कि अब हम सब यहां पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए घर का सुकून कहाँ होता है कि जब घर के अंदर रहने वालों को एक दूसरे पर एतमाद होता है, ये एतमाद के रिश्ते होते हैं। इसीलिए इस्लाम में फोर्स मैरिज मना है। शौहर मजबूरन मजबूर कर दिया गया और वो हाँ कर दे शादी पे, लड़की को मजबूर करके शादी पे माइल किया गया, घर ही नहीं बनता, ऐसी शादी ज्यादा नहीं निपती। तो सबसे पहले घर का सुकून का वो होता है कि शादी का इंतखाब बेहतरीन तरीके से हो, दोनों फरीक के अंदर हारमनी हो। हदीस में आता है कि कफ ढूंढा करो, कफ का फा और वाव उस पर जज्म कर ले। कफ क्या होता है कि बराबरी हो, दोनों में मेंटल लेवल एक हो। ठीक है बाज़ एबनॉर्मल हालात में शादियां होती हैं, लेकिन जब दीन बीच में आता है तो वो एबनॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं छुपती। तो बहरहाल ये कि घर का मिजाज खूबसूरत हो, फिर उस घर के बनने के दौरान यानी शादी कह लें या उसके मराहल, उसमें अल्लाह की रजा को देखा जाए। जब हम अपने बच्चों की शादियों के मौके पर अल्लाह को कम और लोगों को ज्यादा खुश करना चाहते हैं तो अल्लाह की तरफ से बरकत और सुकून खत्म हो जाता है। याद रखिए हर खजाना रब के हाथ में, मोहब्बत का, इफेक्शन का, लव का, रोमांस का, रहम का, मवद्दत का। जब अल्लाह को राजी नहीं करेंगे ऐसे मौकों पे तो कभी भी जोड़ों के दिल में वो खुशी नहीं आएगी। इल्ला ये कि दोनों ही दून दीन से दूर हैं तो कुछ दिन तो वो खुश रह लेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि घर के अंदर जो सुकून आता है ना वो सादगी से आता है। कुरान पाक में अल्लाह अपने नबी को कहते हैं वला तकुम मिनल मुतकल्लिफीन, आप तकल्लुफ करने वालों में ना हो। बास दफा हम ये सोच लेते हैं कि तकल्लुफ करने से क्या है, इसमें फोन ना यूज किया करें क्लास में, मुझे बदगुमानी होती है। ठीक है बस अभी क्या कहा सूरत रूम लिख लें, बाद में जाएं, यही तो होमवर्क होता है ना कि बाद में घर जाके आप उस आयत का नंबर क्या उसका तर्जुमा भी लिखे, जगह छोड़ दे क्योंकि हमारी हर हरकत दूसरों को भी तो डिस्ट्रैक्ट करती है ना। ठीक है तो घर के अंदर तकल्लुफ नहीं होने चाहिए, सादे घर हो, सिंपल घर हो, हर चीज जरूरत की हो, अपनी जगह पे हो। आज दो तरह से घर बेसकून हो गए। नंबर एक, एक तो वो घर से ज्यादा शोकेस लगता है, शोरूम लगता है, हर मॉडल की चीज, हर तरह का डेकोरेशन उस घर में मौजूद है और साहिब खाना ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे घर के शोकेस में ये अच्छा लगेगा भी कि नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, आप और मैं कपड़े पहनते हैं तो हम एक रंग का जोड़ा पहनते हैं, फिर उसी के साथ मैचिंग का दुपट्टा ले लेते हैं, फिर मैचिंग के बुंदे पहन लेते हैं। जो पहनना है वही करेंगे ना तो अच्छे लगेंगे ना। तो अगर आप जरा इमेजिन तो कीजिए कि कोई पीले रंग का सूट पहने, पीले बंदे भी पहन ले सात कान के, दूसरे सिरों में नीले भी पहन ले, लटका ले और कुछ हाथों में पकड़ ले, क्योंकि घर में छह किस्म के बंदे हैं, कैसी लगेंगी आप? एक बरस के का छह बरस पकड़ लें बाजू में, क्योंकि मेरे पास नीला भी है, पीला भी है, लाल भी है, हम कैसे लगेंगे? बस ये कैफियत आज माजरत के साथ कहूंगी बहुत सारे लोगों के घरों की है, बस डेकोरेशन पीस के नाम पे जमा की हुए दुकानें लगती हैं। यकीन करें ऐसे ऐसे घर मेरे अपने रिश्तेदारों में है कि वो घर से ज्यादा दुकान लगती है, शोकेस की अलमारियां यहां से लेके वहां तक की, और वो कहती हैं हर रोज सुबह उठ के मैं खुद अपने हाथ से ये क्रिस्टल सारा साफ करती हूँ, मैं मेड को नहीं इजाजत देती क्योंकि वो तोड़ ना दे। तो बुत बन गए ना, कीमती है। और पाकिस्तान में आप कहते हैं मटकियां कितनी बढ़ती हैं, तो रोज जब सुबह उठ उनकी पूजा शुरू होती है तो जोहर की नमाज तो चली जाती होगी ना, और देख के बिल्कुल ऐसे लगता है किसी भी सुपरमार्केट का, आप छोटे छोटे खानों में हर दुनिया की चीज जमा की हुई है, शौक है। तो क्या इससे सुकून मिला? अब जब वो सारा 4 घंटे की मेहनत से थकेगी तो बताइए क्या उसका मिजाज वो खुशगवार रहेगा? और फिर जब कोई मेहमान आ जाए तो उसकी नजर किस पे होगी कि टूट ना जाए, कोई बच्चा ना पकड़े, अपने बच्चों को तो उस कमरे में बैठने की इजाजत ही नहीं होगी। तो घरों को शोकेस नहीं बनाना। दूसरी इंतहा के बिल्कुल ही भोंडे, और चूंकि हमने बेचारों ने जिसको अल्लाह रहम करे गुलामी में आंखें खोली है ना, हम लोगों का आज मसला कह के हमने इस्लाम का वो पुरतपाक और पुरशिको मंजर ही नहीं देखा। हमारी नस्ल जो ये गुलामी से उठी और गुलामी में पैदा जी रही है अभी तक, तो हमने हर खूबसूरत चीज को दीन से दूर कर दिया, और जहां जरा सी कोई खूबसूरती दीन के साथ आई तो मशकूक हो गए। हमने तकवा को जहालत और उसके साथ कर दिया, कोई होश ही नहीं। जो मर्जी घर के अंदर हालत हो रही है, चीजें बिगड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, रंग बिखरे हैं इधर की उधर, वो भी दुरुस्त नहीं है। तो एक तो ये कि हर वक्त इसी को हवासों पे सवार रखना, ये भी नहीं पसंदीदा, और दूसरी तरफ दूसरा भी नहीं है, दोनों में तवाज़ुन हो। आप एक काम करें, घर को एक तरीके का डेकोरेट किया आपने, अल्लाह ने आपको नेमत दी है, आप कीमती चीजें ले आए, कोई बड़ी बात नहीं, बस जब एक दिन पूरी होगी डेकोरेशन दैट्स इट। अब आप डिसाइड करें कि ये कलर कॉम्बिनेशन, ये चीजें, ये डेकोरेशन, दैट्स एनफ। इसके बाद मैंने ना कोई सेल का साइन देखना है, ना मैंने कभी किसी स्टोर में जाना है, और राह चलते कोई दिख भी जाए खूबसूरत चीज, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है, मैंने पहने हुए कपड़े, अब मैं और क्या पहनूं। आपका दिल करता है, अल्लाह ने आपको दिया, आप एक साल उस सेटअप में रहिए, उसके बाद आपका दिल चाह रहा है मैं और ले लूं, आप वो सारा सेटअप इकट्ठे का इकट्ठा किसी और को दे दें, डोनेट कर दें, उसको जो मर्जी कर दें, आप एक और सेटअप लें, फिर तो कोई अकल भी है। फिर ऐसे लोगों को तो मैं कहूंगी कि उनके अंदर जौक है, लेकिन ये तो कोई जौक नहीं है ना कि आप अपने घर को ही चूचू का मुरब्बा बना लें, और भूंडे घर और गंदे घर, उसमें तो कभी सुकून नहीं आता। घर मैसी चीजें वक्त पे नहीं मिलती, और दो तरह से घर मैसी होते हैं, जरूरत से जायद चीजें होने की वजह से हैं चीजें मिली नहीं रही, क्योंकि अलमारी इतनी भरी हुई है, कुछ लेना होता है तो पहले सारे कपड़े फेंकते हैं, फिर नीचे से कुछ ढूंढते हैं चीज, फिर जल्दी में ऐसे ही घुस भाग जाते हैं, आते हैं तो घर अस्तबल बना होता है, जी शादी खा के आए, और घर में अगर दो चार लोग हों तो वापसी पे आए तो यकीन ही नहीं आता ये घर है जिधर रात सोएंगे हम, बेड है तो उस पर कपड़ों के कपड़ों के कपड़ों के कपड़े रखे हुए, घर मैसी हो जाते हैं, और इससे फिर शौहर का मिजाज भी बदलता है, बच्चे भी चिड़चिड़े रहते हैं, और आपको भी सच्ची बात है गुस्सा आता है। आप आजमा के देखें, जिस दिन आपका घर साफ होता जा रहा, किसी दिन आप डीप क्लीनिंग तो करते ही होंगे ना वीक में, हर चीज ठिकाने पे आप फील करें, उस दिन आपका मिजाज अच्छा होता है, मूड भी खुश होता है, और जब घर उलझा होता है, चाहे आपकी अपनी सुस्ती है या घर वालों के करने से, जहर उन्होंने बिखेरना तो है ही है ना, फिर हमारा गुस्सा उन पर जाता है कि तुम घर में ऐसी करते हो और वो करते हो, जिस फिर उसे क्या होता है हमारे रवैये खराब होते हैं। तो अगली चीज जिससे घर एक बच्ची का और एक लड़की का खूबसूरत होता है वो क्या है कि वो फिर अपने रवैये को देखे। आप देखिए कि हमारा रवैया कैसा होता है घरों में, चिड़चिड़े, दुखी, शाउटिंग, खासतौर पर हमारी आवाजें। आप देखिए कि आवाज इतनी ज्यादा है मैं हमारे पुरसकून होने में या ना होने में, कि जब आवाजें चीखने वाली चिंघाड़ने वाली हो और गुस्से में और शाउट है और डांट रहे हैं और वहां से तौलिया किधर है और कहा था जाए खाना ठंडा हो रहा है, क्या आवाजें अमूमन घरों में होती हैं। कभी आप कोई खामोश सा रिकॉर्डर लगा के सोचें कि ये सारी आवाजें रिकॉर्ड करने के बाद ये दीवार दरो दीवार क्या कहते होंगे, कि इंसानों का घर है। अपनी आवाजों को नरम रखें, और औरत की आवाज में तो अल्लाह ने फितरी तौर पे सुकून रखा है। वो कहते हैं ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ठीक है, मर्दों की आवाज ऊंची होती है, उनकी आवाज में अल्लाह ताला ने एक फितरी तौर पे जोश रखा है, लेकिन औरतें, लड़कियां, बच्चियां, इनकी आवाजें कभी ऊंची नहीं होनी चाहिए। इतनी रखें कि सुन ले, बहुत मिन मिन भी नहीं करना और बहुत ऊंची आवाज से भी नहीं बोलना। तो घर को तरीके से रखना है। फिर इसी तरह आप देखिए कि वहां अल्लाह का जिक्र हो, असल हमारे घरों के अंदर जो सुकून आएगा ना, वो तब आएगा जब हमारे घरों में अल्लाह की फरमाबरदारियां होंगी। 5 वक्त की अजानें, मस्त नमाजें, फिर उसके बाद वहां अल्लाह का जिक्र, दर्स, तदरीस, खुतबे, कभी लेक्चर चल रहे हैं, कभी वहां अल्लाह के नाम चल रहे हैं, कभी तिलावत हो रही है, वहां अपने जिक्र से ज्यादा अल्लाह की बातें हों। कुछ घरों में हर वक्त भां भां बातें ही लोग करते रहते हैं, तो वक्त कहाँ मिलेगा कुरान की तिलावत सुनने का? कई लोग सिर्फ इसलिए घर में तिलावत नहीं चलाते कि फिर बातें करेंगे तो आवाज खत्म होगी। तो क्या हर वक्त हम बोलते हैं? आज जाके चेक करें सिर्फ अपनी इस आवाजों वाले रवैये को कि 24 घंटे में किस किस्म की आवाजें मेरे घर से आती हैं। सोने के वक्त को छोड़ दें, जब घर में कोई नहीं होता उसको छोड़ दें, आप अकेली होती हैं उसको छोड़ दें, उस वक्त टेलीफोन पे आवाजें आ सकती हैं हमारी तनकीद और चुगलियां और गिफ्तें करने की। तो अपने घरों को खूबसूरत घर बनाना है, वहां के रवैये अच्छे हों, दूसरों के लिए आपके दिल में मोहब्बत हो, इंशाल्लाह आप देखेंगे। फिर घर कंफर्टेबल हो, मौसम के मुताबिक हो, गर्मी है तो ना इतनी गर्मी है कि गर्मी 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 और हर काम पर, और सर्दी है तो सर्दी, और ना सर्दी में इतना गर्म कर लें कि गर्म गर्म हो जाए। कंफर्टेबल हो, सुकून हो, घर को देखकर फीलिंग आए कि ये एक पुरसकून माहौल है, तरीके से रहने वाला हो। और सबसे बड़ी बात देखे, तस्तखिफूनहा, तुम हल्का पाते हो उसको। एक छोटा सा सवाल दे के आगे चलती हूँ कि अगर हमें नोटिस मिले 3 दिन का कि 3 दिन में अपना घर रैप अप करके कहीं जाना है, तो क्या मेरे लिए ये आसान जॉब है कि मुश्किल है? 3 दिन तो मैंने बड़े एहतियात से कहा, बाज दफा तो लोगों को 1 दिन के नोटिस पे जाना पड़ता है, फिर जो हालात होते हैं घर के। आज से अपने घर के ऊपर नजर डालें, इस आयत पे अमल करते हुए कि मैंने अपने घर को इतना लाइट रखना है कि मुझे 3 दिन के अंदर पूरा घर रैप अप करके दूसरी जगह जाना पड़े तो मैं बड़ी खुशी से जाऊं। फिर इसी तरह आप देखिए, वो घर पुरसकून होते हैं जहां लोगों के हक तलफियां ना होती हैं, मिस यूज ना हो हकूक और फराइज का, शौहर, बीवी, सास, नंद, बहू, देवर, जो भी है, तवाजुन हो, हर एक उसका हक दें। बहू है तो उसको मशीन ना समझे, वो आपकी मासी नहीं है, वो गुलाम नहीं है, जुबान उसके मुंह पे है लेकिन वो बोलती नहीं है, ये आपकी इज्जत करती है, दिल उसका बोलता है, वो भी एक इंसान है। और अगर आप समझते हैं कि आपके घर में कोई इस तरह का बुजुर्ग है कि जो आपके साथ खिदमत नहीं कर सकता और उनकी वजह से आपको काम करना पड़ता है, तो ये सोचें कि आपको भी वहां जाना है, उस उम्र में आपने भी पहुंचना है। और अगर शौहर है तो वो ये ना सोच लें कि बीवी का मकसद ही है कि जब रात को आधी रात को भी कहूं चाय का कप पर आऊं और हर वक्त घर पूरा सजा सजाया और वो बिल्कुल एक मॉडल बनी, खुद भी सजी रहे, ये कभी हुआ? आज तक हुआ कि कभी कोई गंदा ही ना हो, कोई मैल नहीं लगते? क्या आप सोच सकते हैं कि आपका मर्द हर वक्त आपकी हर जरूरत ही पूरी करने को तैयार है, हर वक्त आपकी हर फरमाइश को लाए? तो तवाज़ुन के साथ रहें, इंसानों की तरह जब रहेंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे घरों। और एक और चीज आप करके देखें, इस बात को सुनने के बाद अगर करेंगे तो आप देखेंगे इसका एक खास इफेक्ट आपके घर में कि घर खुशबूदार हो। आज से अगर आप अपने घरों को खास तौर पर खुशबुओं में बसाना शुरू कर दें, कुकिंग करनी है, प्याज, लहसुन, मिसाले, उनकी कितनी स्मेल है हमारे घरों में। और जब हर वक्त चूल्हा पकता है, अब दोपहर का पका लूं, अब शाम का पका, कभी औरतों ने यह सोचा कि शौहर के आने से पहले 1 घंटा पहले तक अब सब खत्म, कोई घर में कुकिंग की स्मेल ना हो, पका हुआ फ्रेश खाने की खुशबू तो है लेकिन लहसुन प्याज अदरक की मिसाल ना हो। बहुत कम हमारे घरों में इसका ख्याल आता है। आखिरी वक्त तक, मर्द के आने तक औरतें किचन में होती हैं और कपड़ों में भी बू है और वो थूम प्याज जो हमारे खानों में स्मेल भी ऐसी होती है। घर को खुशबूदार रखें, साफ सुथरे, इतनी सस्ती किस्म की खुशबुएं मिल जाती हैं, इतर है, इतना कुछ, क्या कुछ है, नेचुरल सी चीजें हैं, लेकिन आप अपने घर से चेक करें। यानी मैं आपको सिर्फ इतनी छोटी सी मिसाल देती हूं कि मैंने अपने किचन में ट्रैश कैन नहीं रखा हुआ, आप इसको मेरी कंजूसी कहें, लेकिन वजह क्या उसकी कि मैं सोचती हूं कि अगर ट्रैश कैन में ट्रैश होगा तो मैं हर वक्त तो नहीं फेंकूंगी, जरा मुझे शक होगा कि अभी किचन के काउंटर जो अपना वो नीचे है, क्या बोलते हैं, सिंक, खाना जब पकता है एक दफा उसी में जो आना है जाना है समेटा, जो ही पता उसको घेरा बांध के दरवाजे के पास, और जितनी दफा घर से बाहर कोई जाता है, खुद जाए या मियां साहब जाए, वो पकड़ेंगे नीचे जाके बिन में। यानी कभी आपको शायद 2 घंटे पुराना ट्रैश भी घर में ना मिले, क्यों? कि यहाँ के घर बंद होते हैं तो स्मेल आती है, यानी बर्दाश्त ही नहीं होता कि घर में स्मेल हो। कुकिंग करते हैं, एग्जॉस्ट खोलें, तो बहरहाल अब ये सारी चीजों पे फिर बात आ जाएगी। लेकिन खुद अपने घर को देखें, फिर आप देखेंगे कि घर वालों का मिजाज क्यों बिगड़ा रहता है। यकीन करें कुछ घर ऐसे होते हैं, इतना सुकून, इतनी खुशी, मजा आता है वहां जाके, हालांकि सिंपल। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि बेचारे खातर कर करके पीछे हो जाते हैं, लेकिन हमारी हमारा दिल नहीं लगता वहां, घबराहट, डिस्ट्रेक्शन बहुत होती है इस तरह की चीजों में। तो इस तरह से ये घर इंशाल्लाह पुरसुकून होंगे, तो घरों में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, तस्वीरें। म्यूजिक और ऐसी चीजें जहां शैतान खुश होता है उन पे चलिए। आयत 81, वल्लाहु जअललकुम मिम्मा खलक जिलालन, और अल्लाह ही ने बनाया है तुम्हारे लिए अपनी पैदा करदा चीजों से साया। देखिए अल्लाह कहने का अंदाज तो देखिए, मेरी चीजें और मैंने उनका साया भी बना दिया, दरख्तों का साया, इंसानों का अपना साया, इंसान की हर चीज का साया। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि साये में क्या रहमत है भाई। अल्लाह कहते हैं कि मैंने साया साया बना दिया है, तो साये वाली क्या बात है। लेकिन आपको पता है कि सायों के अंदर भी इंसान के लिए बहुत बड़ी रहमत है। अगर दरख्तों का साया ना होता, बाहर जाते हैं तो उस दीवारों का साया ना होता, तो कोई धूप में चलने वाला तो जल के राख हो जाता। जो बेचारे खेतों में काम करते हैं, किसी दरख्त के नीचे साया ही नहीं है, कहाँ जाते हैं। ये हम घर में होते हैं, लेकिन ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता और घर के अंदर भी हम गर्मी महसूस करते तो कैसा होता। आज तक शायद हमने कभी शेडो को भी एक फील नहीं किया, हालांकि आपको पता है कि शेडो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये सब कुछ देकर हमें ये बता दिया कि इन सायों से तुम फायदा उठाओ। अल्लाह की जात है जो तुम्हारे लिए ये सब चीजें लेके आती है। वजाल लकुम मिनल जिबाली अकनानन, और इसी ने बनाई तुम्हारे लिए पहाड़ों के अंदर गारें। अकनान जो है ना, किन्नुन की जमा है। ये जो लफ्ज है ना कान, ये जो मेरा और आपका कान, ईयर, वो भी यही है। कान को अगर आप देखें ना अंदर से इसका सिस्टम, तो बिल्कुल एक गार की तरह। अल्लाह का कुरान ना होता तो कभी गारों को भी कोई डिस्कस करता इस कुरान में। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अब आप और मैं तो इसको समझ ही नहीं सकते कि गार क्या होती है, लेकिन जरा गारे हिरा को देखिए। कभी आपने सोचा अल्लाह के नबी गारे हिरा में क्यों जाते थे इबादत के लिए, और गारे सौर को इतनी इज्जत क्यों मिल गई, और असहाबे कहफ गार में क्यों छुपे? क्योंकि हदीस में आता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया में इतने फितने और इतनी तबाहियां होंगी कि लोग पहाड़ों में निकल जाएंगे, गारों में पनाह ले लेंगे। तो ये अल्लाह की एक नेमत है, पुरसकून चीजों की तरफ, मौसम की शिद्दतों की तरफ। फिर वो मारूफ आपने जो हदीस सुनी हुई है जिसमें तीन लोग एक गार में छुपते हैं और गार का मुंह बंद हो जाता है, और फिर अपनी अपनी खूबियों को, अपनी अपनी इखलास वाली नेकियों का जिक्र करते हैं तो वहां रास्ता बनता है। तो पहले दौर में गारों की बड़ी अहमियत थी। जब दुश्मन के आने का पता होता, लोग जाके गारों में छुप जाते थे। तूफान आता, सर्दी गर्मी होती, लोग वहां छुप जाते। तो अल्लाह की जात है, उसने क्या कुछ करके बताया। वजअल लकुम सराबील तकीकुमुल हर्रा, और बनाए तुम्हारे लिए ऐसे लिबास, लिबास जो तुम्हें बचाते हैं गर्मी से। वह सराबील तकीकुम बसकुम, और ऐसे लिबास, इससे मुराद लिख लीजिए जिर हैं, जो बचाते हैं तुम्हें लड़ाई से। दो किस्म के कपड़ों का यहां जिक्र है। हमारे जहन में क्या आ रहा था ख्याल सुनते कि गर्मी के कपड़े, तकीकुम अल हर्रा कह दिया तो उसके बाद सर्दी के कपड़े होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो अमूमन यही होता है ना, मौसम के मुताबिक गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े। लेकिन यहां आप देखिए कि सर्दी से बचाने का जिक्र तो नहीं है, सिर्फ गर्मी का है। वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए एक इस तरह का निजाम बना दिया है कि मौसम के मुताबिक उसके कपड़े भी होते हैं। क्योंकि आप देखिए कि अरबों में जहां भी कुरान नाजिल हो रहा था तो वहां मौसम बहुत शिद्दत का था, गर्मी बहुत थी। तो यहां सिर्फ गर्मी का जिक्र कर दिया, सर्दी का नहीं किया। लेकिन ये ऑब्वियस है कि गर्मी हो के सर्दी हो, इंसान लिबास पहनेगा। लेकिन जब रूह ने तकवा का लिबास नहीं पहना होता ना, तो गर्मियां आते ही जिस्म की फैलती है, इस तरह गंदगी फैलती है, लोग इंसान से जानवर बन जाते हैं कि कपड़ों से आजाद होते हैं। वो लोग जिन्होंने गर्मियों में कपड़े हल्के किए कि अब गर्मियां आ गई हैं तो अब सी थ्रू कपड़े और नंगी टांगे और नंगे बाजू, आज डॉक्टर्स के कहने पे अब गर्मियों में कपड़े पहन रहे हैं। क्यों? कि हमारी स्किन के ऊपर जब सन की रेस पड़ती है तो कैंसर होता है। आज स्किन कैंसर की बहुत बड़ी वजह स्किन का एक्सपोज होना है। हमारे मुल्कों में ये स्किन डिजीजेस क्यों नहीं होती जो यहाँ है? एक्जिमा देखिए कितना है इधर, आप देख सकते हैं कि स्किन में विटामिन डी की कमी की वजह से जो वाइटनेस आ जाती है, यानी वेस्ट में जितने हम पाकिस्तानी लोग रहते हैं, ये नॉर्वे की सुनी हुई बात आपको बता रही हूँ कि वो डॉक्टर्स कहते हैं वहां के कि आप लोगों की स्किन जो है इधर के मौसम की है ही नहीं है। कई लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ कि जो सिर्फ इसलिए सर्दियों में पाकिस्तान चले जाते हैं कि खुली धूप में बैठ के अपने जिस्म पे वो विटामिन्स लें, जो कि हमें एक विटामिन डी की गोलियों से भी नहीं मिलते। थ्रॉन नाम की एक चीज मिलती है, फिश का ऑयल होता है, शायद नॉर्वे में हर दूसरा बंदा वो पीता है सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इन कुदरती तौर पे अल्लाह सुबहान तआला ने हमारे जिस्म के लिए ये नेचर के अंदर ये चीजें रखी हुई हैं, हम इनको कभी सोचते भी नहीं है। कितनी दफा हमने कभी सोचा धूप को और गर्मी को, तो ये कपड़े अल्लाह की नेमत है, मुख्तलिफ किस्म की हवाएं आती हैं तो इंसान को झुलसा के रखती हैं, फिर उसके बाद ये जो लिबास है जिसमें सॉरी बासकुम, ये जो दूसरा लिबास है कि सराबील तकीकुम बासकुम, ये सराबील है ना, सिरबालुन की जमा है, ये रुबाई है, सीन रा बा लाम इसका रूट होता है, लंबी कमीज को कहते हैं, जैसे जुब्बा कह लीजिए, अरब लोग कमीजें लंबी लंबी पहनते थे, उसी की तरफ इशारा है, लेकिन ये जो दूसरी है इससे मुराद जिरहें हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिरहें बनाने का इल्म दिया था, उनके हाथों में लोहा आके ऐसे मोल्ड हो जाता था जैसे मोम है, तो वो उससे जंजीरियां बुन के फिर कपड़े बनाते थे, और अरब लोग जब दूर दूर लड़ाई करते थे तो इस चीज की बड़ी अहमियत थी। ये सब कुछ क्यों दिया? कज़ालिका युतिम्मु नेमतहु अलैकुम, इसी तरह वो इतमाम फरमाता है अपनी नेमत का तुम पर, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसकी इताअत की रविश इख्तियार करो। ये है असल बात। देखिए सूरत में नेमतों के जिक्र की तकरार है, आयत 18, फिर 35, फिर 71, फिर 72, फिर 83 और 114 में बार बार इन नेमतों का तذکرہ है कि तुम तो तस्लीमून हो जाओ। खुद से पूछिए जितनी नेमतें हैं, क्या उन नेमतों को पाकर इतमाम नेमत हुआ? सवाल पैदा होता है कि इतमाम नेमत या नेमत की तकमील से क्या मुराद है? तो मुराद यह है कि अल्लाह ने इंसान की हर जरूरत का ख्याल रखा। देखिए अल्लाह ताला पहले हमारी नीड्स पूरी करता है, जब नीड्स पूरी होती है ना तो फिर वॉन्ट्स पे आ जाते हैं, पहले जरूरियात है फिर तईशात है। वो रब वो है जिसने हमारी सिर्फ जरूरतें ही नहीं ख्वाहिशें भी पूरी की हैं। अपने घर की चीजों का जायजा ले ले, मेरे घर में कितनी चीजें जरूरत की हैं और कितनी ख्वाहिश की हैं। पहले भी एक छुरी से सारे काम हो जाते थे, अब एक छुरी से सिर्फ एक होता है, दूसरी छुरी फ्रूट की है, तीसरी पीलर है, चौथा वो है, कहीं वो कटर है, कहीं फलां है, कितनी 10 किस्म की तो छुरियां होती हैं आज किचन में। शुक्र कितना है इन इतमाम इस नेमत, मुस्लिमोन तुस्लिमोन, मुसलमान होना, युस्लिमोन, खुद सुपुर्दगी अल्लाह के आगे अपने आप को देना, ये कितना है? जितनी घर में दुनिया की चीजें आती हैं ना उतना हम दीन से दूर भागते हैं, आपको पता है। एक तो उनकी टेक केयर में, दूसरा ये कि खराब ना हो जाए। उतने हमारे घरों में दीन की चीजें नहीं आ पाती, हम लोगों को बुला ही नहीं पाते सिर्फ ये सोच के, नहीं हमारा घर गंदा हो जाएगा, लोग आएंगे तो व्हाइट सोफों को गंदा कर जाएंगे, कर्टन्स को खराब कर देंगे। तो देखिए दुनिया की जो चीजें हैं उसको रखिए, और यकीन करें अगर आप सिर्फ सूरत निसा नूर ये सूरत सूरत नहल में जो नेमते ना इनको जमा करें ना तो एक छोटी सी किताब बन जाए। मुझे तो लगता है कोई चीज छुटी नहीं है। अल्लाह ताला ने बता दिया कितने मुख्तलिफ किस्म के खाने हमारे घरों में, कितने मुख्तलिफ किस्म के बर्तन हमारे घरों में, कितने पहनावे, बैठने की चीजें, जगह। कभी नया घर बनाएं तो आपको अंदाजा होगा कि घर की जरूरतें क्या होती हैं। हमें तो चूंकि हर चीज बचपन से देखी घरों में पड़ी है ना, तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं है घर में, जरा वो कुछ नहीं को जरा जमा तो करके देखें बाहर, तो इतनी बड़ी ढेरी लग जाएगी। तो करिए, बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, साफ सुथरा रखिए, लेकिन एक शर्त है, लअल्लकुम तुस्लिमून, मुसलमान बन के जियो, अल्लाह के फरमाबरदार बनो। और अगर नहीं बनते, उन्हीं नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में यूज करते हो, उन्हीं पार्टियों और गैदरिंग्स में तुम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते और तुम्हें सेग्रीगेशन अच्छी नहीं लगती कि अब ईद की पार्टी सब रिश्तेदार हैं, घर वाले ही, अब क्या पर्दे तान लें और औरतें मर्द इकट्ठे और खूब पहनी ओढ़ी, भाभियां भतीजियां बेटे सब एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, तो फाइन तवल्लो फाइन नमा अलैक अलब। तो नबी अगर ये लोग मुंह फेर लें, आज उम्मत मुस्लिमा ने मुंह फेरा हुआ है, कितनी हमारे घरों में, जितने घर बड़े उतनी बेहयाई ज्यादा, देखिए पहले दौरों में आपने सुना होगा पुराने घरों में जनान खाना मर्दान खाना, छोटे घर होते थे, हवेली टाइप ही था, चाहे ये औरतों के एंट्रेंस है ये मर्दों की, ये औरतें बैठेंगी ये बच्चे, बीच में पर्दे हैं कुछ है, पर्दों से चीजें ली, ये मर्दों की तरफ से डाइनिंग रूम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे अपने घरों में कि मौजूद है सब। आज जब घर बड़े बने शुरू से बाहर से शीशा, यहाँ तो खैर आप मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकते ना, लेकिन आप जरा अपने पाकिस्तान के घरों को देखें, दूर से आप डिफेंस की रोड पे जाते हैं ना तो सामने विले की सब अंदर की बाथरूम तक दिखते हैं, पूरे ग्लासेस शीशे की फुल विंडोज। फिर आप विंडोज के ऊपर पर्दे नहीं लगाएंगे जी, अब ये आगे ब्लाइंड का रिवाज नहीं रहा, अब पर्दे नहीं लगाएंगे, दिस यानी घर इतने एक्सपोज हो गए हैं कि घर में एक दफा कोई घुस जाए उधर ही बहू बेटियां भी फिर रही हैं, घूम रही हैं, और वहीं मेहमान भी बैठे हैं। तो याद रखिए इन नेमतों को इस्तेमाल करें, लेकिन अल्लाह के आगे रिबेलियस तो नहीं होना। मैं एक अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे आलिम है, तो उनके घर पहले भी जा चुकी हूँ, तो मैंने जब इस दफा गई अपनी इस ट्रिप में मुझे मौका मिला जाने का, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ कि मुझे लगा कि जो इनका सिटिंग एरिया था पहले बड़ा था। खैर बहरहाल किस्सा मौसर बाद में बातों में उन्होंने बताया कि हाँ पहले जब हम जाते थे, आज से 5-6 साल हो गए होंगे इससे भी, तो उनके अपने बच्चे, बच्चों के जो बच्चे थे वो छोटे थे, बेटियों के और बेटों के बच्चे बेबीज थे, कहने लगी कि जब से भाइयों के बच्चों में जो पहला बच्चा बड़ा हुआ है या बेटियां अब घर में आती हैं जिससे अपने ही हमारे घरों के, तो बेटे बेटियां अब जवान है ना, तो कहती कि अब्बू ने लॉन्च को एक दीवार करवा के अंदर दो हिस्सों में कर दिया। मैं खुद हैरान थी जब मैं गई, तो मेरे अपने भाई के बच्चे और वो सब भी आए हुए थे, तो वो वही घर है लेकिन उन्होंने अब इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि इवन अपने बेटे बच्चे नाना दादा के साथ एक एंट्रेंस से आते हैं, और जो घर की बच्चियां हैं यानी आप जिनको कह सकते हैं 12-14 साल की बच्चियां, वो दूसरे हिस्से में होती हैं। जिन्होंने करना है उनको तो करना, और जो नहीं करेंगे वो के मरा दम घुटता है। रहमान का कमेंड है कि अक्सर इनमें से ना शुक्रे हैं, ये मैं कहूं तो आप कह सकते हो सकता है इनके अंदर शिद्दत आ गई है, लेकिन अल्लाह बताता है कि अक्सर लोग नेमतों को पाकर नाशुक्रे हो जाते हैं। जितनी बड़ी शादी उतनी ओपन, 1,000 की गैदरिंग है या 2 की, वो कहते हैं बीच में पार्टीशन कर दे ये तो सारा हुसन ही खत्म हो जाएगा, ना स्टेज दिखेगा ना दुल्हन दिखेगी। क्या सारी खुशी और सारी नेमतें नाफरमानियों के साथ है? कभी एक लम्हे के लिए इंसान सोचे, शैतान इस तरह के हमें धोखे देता है कि जितना अल्लाह की नाफरमानी करोगे उतना ज्यादा खुश रहोगे। हालांकि याद रखे ये जो आज बीमारियां हैं, जो आज परेशानियां हैं, जिनकी कोई वजह नहीं समझ आती, ना सर ना पैर, जिसको आप कह सकते हैं कि खाते पीते भूखे, नेमतों में भूखे, सारे टेस्ट मौजूद हैं हमारे, हर चीज ऑर्गेनिक हम खाते हैं, ये जो बीमारियां हैं ना, मैं बहुत यकीन करे सोच के बोल रही हूं, मैं कोई जज्बाती जुमला नहीं बोल रही कि आपको गरमा दूं, ये जितनी आज के दौर में हमें मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां ना, ये कफारे शुक्र करें अगर हम बीमार होते हैं आज के माहौल में, क्योंकि हम ऐसे ऐसी नाफरमानियां कर जाते हैं अल्लाह की नेमतों को पाके कि फिर अल्लाह अगर हमें इस तरह दुनिया में ना पाक करे तो फिर कब्र में जाके करेगा या हशर में करेगा। तो बेहतर है कि हम दुनिया में ही पाक हो जाए, को आसान साफ सुथरा रख के देखिए, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीजों से बचा के रखेगा, और इल्ला माशाल्लाह, हमें नहीं किसके साथ क्या मामला है, लेकिन हमेशा अपने मामले को सोच, क्या मैं मुनकिर तो नहीं हूं, क्या अल्लाह की नेमतों को पाकर मैं नाफरमान तो नहीं हो जाती, ना शुक्रिया तो नहीं। कितनी बड़ी बात है ना कि यारिफूना नेमत अल्लाह, आप इमेजिन करें, आप पहचान गए कि ये आपका घर है लेकिन आप उसमें दाखिल होने की बजाय कहते नहीं नहीं सुमा यून की रू ना, मैंने नहीं इसमें जाना, आप 2-4 घर छोड़ के एक बहुत बड़े ब्रांड न्यू किसी का घर है उसका दरवाजा नॉक कर दे कि मैं तो इधर ही जाऊंगी, क्या करेगा अगला आपके साथ? क्या आज इंसानियत दुनिया में रहते हुए अल्लाह के साथ कुछ ऐसे ही मामला नहीं कर रही? क्या अपने आप को हम इन चीजों को नहीं देखते? इसलिए ना शुक्रियों से बचना है। इब्ने अबी हातिम की एक रिवायत है कि एक अराबी अल्लाह के नबी के पास आया, फिर आपने उसके सामने इस आयत की तिलावत की कि अल्लाह ने तुम्हें रहने सहने की जगह के लिए घर और मकान दिए, इसने कहा सच है, फिर आपने पढ़ा कि इसने तुम्हें चौपायों की खालों के खेमे दिए, इसने कहा यह भी सच है। इसी तरह आप इन आयतों को पढ़ते गए और वो हर नेमत का इकरार करता गया, आखिर में आपने पढ़ा इसलिए कि तुम मुसलमान और मती हो जाओ, कि अब तुम सारा कुछ पाके मुसलमान हो जाओ, इस वक्त वो पीठ फेर कर चल दिया, तो अल्लाह ने यह आखिरी आयत उतार दी कि इकरार इकरार के बाद इनकार करके काफिर हो जाते हो, वो तुम्हारा अभी था, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहां अपने से नियत कीजिए, जिस दिन में कोई नई चीज आए, आती है खाने पीने की कोई चीज आए, कोई दिन होगा जिसे हमारे घर में कोई फ्रेश चीज ना आए, उस दिन एक बार फिर अल्लाह का शुक्र करें और कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे ये नेमतें दी, अब इनको पाने के बाद मुझे तेरा फरमा बरदार रख। जितना ज्यादा अल्लाह ताला के फरमा बरदार होंगे, वह इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अल्लाह नेमतों को बढ़ाएगा। और हमें सच्ची बात है, अल्लाह से लेना ही नहीं आता, अगर हम अल्लाह से लेने वाले बन जाते तो अल्लाह की जात हमें आसमान से रिस्क बरसाता। किस तरह से ये सारे हालात होते हैं, अब अगली आयतों में कुछ कयामत के दिन की गवाही है कि अगर ये सिर्फ दुनिया दुनिया तक होती ना तो बात भी थी, लेकिन असल बात है कि ये दुनिया नहीं है। आयत 84, व यौम नबसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और जिस दिन हम उठाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह। इमेजिन करें। और आप ये भी नोट कर लीजिए कि शहादत हक का ये मजमून इस सूरत में दो बार आ रहा है, आगे भी आयत 89 में भी यही बात आएगी। इससे पहले इस मौजू पे हम बात कहां कर चुके, सूरत बकरा आयत 143, दूसरे पारे की दूसरी आयत है वो, कजालिक जअलनाकुम उम्मतम वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास। और इसी तरह सूरत निसा की आयत 41 कि जिसके बारे में वो मारूफ रिवायत आप सुन चुके हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मसूद से कहा कि मुझे सूरत निसा सुनाओ, और जब इस आयत पे पहुंचे तो आपकी आंखों से टप टप आंसू निकल रहे थे। सूरत अल अराफ में भी हम पढ़ चुके हैं आयत 6 में, फल नसलन उर्सिला इलैहिम वल नसलन मुरसलीन, हम जरूर पूछेंगे उनसे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए। हमारी तरफ भेजे गए? जी बिल्कुल भेजे गए। आज अल्लाह के नबी हमारे पास नहीं है, पर हदीस है और खुलासा है उसका, एक नबी एक सहाबी का कौल है कि जिसको कुरान पहुंच गया उसको नबी का फरमान पहुंच गया। तो आइए जरा इस सारी तमहीद के साथ इसको सुनते हैं कि व यौम नबसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, जिस दिन हम उठाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह, और ये कौन होगा, उस कौम का नबी होगा। फिर पूछेंगे, पेशी होगी। आप कह लीजिए कि उम्मत के रसूल कयामत की अदालत में सरकारी का बताओ, जो पैगाम दिया था पहुंचा दिया, वो कहेंगे पहुंचा दिया, फिर अल्लाह उसके ऊपर लोगों से गवाहियां तलब करेगा कि क्या नूह ने पैगाम पहुंचा दिया, मूसा ने पहुंचा दिया। थुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफरू, फिर काफिरों को तो बोलने की इजाजत भी ना मिलेगी। आज तो पटर पटर बोलते हैं ना, कभी खिलाफ बोलते हैं, कभी अपनी मर्जी की बातें करते हैं, कहा वहां तो बोल नहीं सकते, बल्कि वला हुम युस्तातबून, और ना ही इनको वहां उजर पेश करने का मौका दिया जाएगा। वहां नहीं कहा जाएगा कि कैन यू डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, क्या आप अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हैं। दुनिया की अदालतों में ऐसे जुमले होते हैं ना, वहां नहीं बोलेंगे। यहां देखिए लफ्ज यूजन तो आम है, इजन से इजाजत परमिशन, लेकिन युस्तात अबून का लफ्ज नया है, आइन ता बा इसका रूट है। इसको हमने पीछे किस रंग में पढ़ा है, अताब। अताब क्या होता है, पकड़, अल्लाह ताला की तरफ से डांट। एक होता है अजाब, अजाब क्या होता है कि अल्लाह ने कर दिया जो कहा, पकड़ लिया। लेकिन अताब क्या, करूंगा, यानी जैसे आप अपने बच्चों को अक्सर डराते हैं ना कि ये करोगे तो ये कर दूंगा, तो आम तौर पे ये लफ्ज क्या बना, अताब। लेकिन जब इसके साथ अलिफ सीन ता लग गया, जैसे यहां लगा युस्तातबून, तो अताब से रफा होना, यानी उजर तराशने का मानी है इसमें कि कयामत के दिन फिर इनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि अच्छा जी आपके पास क्या उजर थे। देखिए दुनिया में तो बहुत सारे उजर है ना, हम पेश कर देते फौरन झट से, नमाज लेट हुई उजर, शौहर नहीं करने दे रहे थे, बच्चे थे, मेहमान आ गए, दुनिया में फौरन बगैर सोचे समझे हम अपने आप को इस तरह के दूसरों को के सर पे अपना पिटारा रखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि करे कोई और भरे कोई, हम दूसरों के नाम पे अपने आप को सुरखरू करते हैं, गलतियां हमारी होती हैं, नाम दूसरों के लगा देते हैं। लेकिन कयामत के दिन जाकर लोगों को इतना भी मोहला नहीं मिलेगा कि वो अपना उजर पेश करें। और बास कहते हैं युस्तात अबून जो है, युस्तबून सॉरी फूम पेश किया जाता है, युस्तात अबून, कि वो तौबा नहीं कर सकेंगे, कर लें। आज दुनिया में अपने उजर रफा कर लें, कियामत के दिन कोई उजर पूरा करने का मौका नहीं दिया जाएगा, कोई हुज्जत वो नहीं पेश कर सकेंगे, इत्मामे हुज्जत हो चुकेगा। दुनिया में अल्लाह ने नबी दिया मक्का वालों को, नहीं माना, एहसान फरामोशी की, ना शुक्री की, अल्लाह कहते भाग जाओ। कयामत के दिन वो नहीं कहेंगे एक्चुअली एक्चुअली, कोई एक्चुअली नहीं वहां चलेगा, क्योंकि उनके जरायम खुलेआम दिख रहे होंगे, नाकाबले तावील किस्म की शहादतों से साबित हो रहा होगा कि ये मुजरिम है। तो सफाई तो वो पेश करता है जिसका कोई ढका छुपा जुर्म हो, तो गोया के पता चलेगा कि वहां अपने आप को बचाओ। कोई नहीं कहेगा कि या माफिया मांग लो, अच्छा सब्र कर लो, इंतजार कर लो। आज दुनिया में देखिए, गुनाह करो ना, कर भी लो तो भी कितने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दरवाजे मौजूद हैं, इस्तग़फार कर लो, सदका दे दो, उस गुनाह को बदल कर नेकी में कर लो, आगे अच्छे काम कर लो। असारे मौत से पहले पहले हमारे पास बहुत वक्त है, अगर हमें यकीन हो कि हमने अभी जीना है तो फिर मौजें करते रहे, बाद में तौबा कर लेंगे, लेकिन वहां कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग वहां कितने, जिसको आप कहें कि हथड़ होंगे, अपने हाथ छुपाएंगे। अब जाहिर है कि जब एक बंदा खुद अपना काम ना कर सके तो दुनिया में अमूमन क्या होता है, उस वक्त किसी दूसरे की मदद चाहते हैं, भाई मैं अपना काम खुद नहीं कर पा रही तो मैं आपसे पूछूंगी ना। अब जब कयामत के दिन इनकी अपनी कुछ नहीं चलेगी तो अब ये क्या करेंगे, उनको बुलाएंगे जिनके पीछे लगे हुए थे, जिनको बड़ा समझते थे या जिनसे इंप्रेस थे। इसका तस्करा आयत 85 से अगली चंद आयतों में, व इजा अल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाब, और जब ये जालिम देख लेंगे अज़ाब को। अब जालिम समझ आ गया कौन, न शुक्रे न कदरे, क्या करेंगे अज़ाब को देख के, होगा क्या इनके साथ, फला युखफ्फफ अन्हुम, इनसे हल्का ना किया जाएगा, क्या अज़ाब। ये जो लफ्ज है ना युखफ्फफ, उर्दू में कैसे हम बोलते हैं, तख़फीफ, कि इनके अजाब में कोई कमी बेशी ना की जाएगी, वला हुम युनज़रून, और इनको मोहलत ना दी जाएगी। देखिए लफ्ज नजीरा होता है ना देखना, नाजरीन, नजारा, मंजर, और यहां के युनज़रून मफूल है, तो मोहलत जब होती तो इंसान की नजरें लग जाती है ना, शायद मुझे कोई मोहलत मिल जाए, शायद मैं बच जाऊं, उससे पूछूं उससे पूछूं, तो यहां पे युनज़रून का मानी मोहलत या ढील है, यानी कोई रास्ता ही नहीं है इनके लिए। वइज़ारा अल्लज़ीन अशरकू शुरकाअहुम, और जब मुशरिक लोग देखेंगे अपने बनाए हुए शरीकों को, अब मैदाने माशर में इमेजिन कर रहे हैं खुद को कि वहां खड़े हैं, कोई क्लेम नहीं, कोई खिड़की नहीं खुल रही, नो एक्सक्यूज। दुनिया में होता है ना, हम बाज़ दफा कहते हैं कोशिश कर देखो, वहां सब यकीन है कि ये काम नहीं होगा, कोई भी दुनिया में कभी काम रुका हो तो उसको ज़हन में ले आए। जब वो नहीं होगा तो क़यामत के दिन पे ये सोचेंगे कि कोई और लोग हमारी मदद करेंगे। अब इनको वो लोग दिखेंगे जिनकी ये दुनिया में पूजा करते थे, लेकिन वो अच्छे लोग थे, क्या कहेंगे वो इनको, कालू रब्बना हाउलाई शुरकाउनल्लज़ीना कुन्ना नदउ मिन दूनिक, कहेंगे हमारे रब यही हैं हमारे वो शरीक जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारते थे। समझ रहे, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल कादर जिलानी, किसी को दाता कहते थे, किसी को करनी वाला, मुश्किल कुशा, दस्तगीर, खुद नहीं कहा जिंदगी में कि हमारी पूजा करो, उन्होंने नेकियां की, अल्लाह ने उनकी नेकियों पे उनको इज्जत दे दी, लोग उनके उनकी से मोहब्बत करने लगे। किसी ने, याद रखिए कि दुनिया में जो माबूद पूजे जाते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, एक वो है जो खुद भी भटके हुए हैं जिंदगी में, दरगाहें कब्रें बना के बैठते हैं और वहां लोगों को बुलाते हैं, भंगे पीते हैं और लोग वहां न जाने क्या कुछ पीर मरीदी होती है, वो तो कल पकड़े जाएंगे खुद भी। लेकिन दूसरे वो नहीं, उन्होंने नहीं कहा था मुझे अल्लाह का बेटा को, फरिश्ते, उन्होंने मुझे दे रहा, बड़ी इनकी क्यामत के दिन पे इज्जत है। तो ये मुशरिक फौरन कहेंगे ला वो हैं जिनको हम पुकारते थे, हम उनकी कब्रों पे चढ़ावे चढ़ाते थे, उनके उर्स करते थे, वहां गुलाब की पत्तियां छिड़कते थे, कई अमन अरके गुलाब से उनको धोते थे, इनकी कब्रों पे खड़े दरवाजों से हम गुजर के बहिश्ती होते थे। ये इनको पकड़ ले, अब सोचिए कि ये उनको देख के क्या कह रहे हैं, कि अल्लाह ये हैं वो लोग, फल को इलैहिमुल कौला इन्नकुम लकाज़िबून, ये किसका जुमला है, उन बुजुर्गों का, तो वो फेंक देंगे ये बात इन्हीं की तरफ कि तुम लोग यकीनन झूठ बोल रहे हो। बात वैसे हुई है, ये हस्तियां इनके बैठना, ये मुकद्दस लोग थे, ये बुजुर्ग थे, ये नेक लोग थे, ये चाहे अब्दुल कादर जिलानी है या कोई भी, ये कह देंगे अकेला हमने तो नहीं कभी कहा था कि तुम करो। ये अंदाज आपको सूरह मायदा के आखिर में मिला था, हजरत ईसा के क्यामत के दिन कहेंगे अल्लाह मैंने तो नहीं इनको कहा था कि मुझे अल्लाह का बेटा बनाओ। आप सोचिए उस वक्त इन मुशरिकों के साथ होगा क्या। वो कहते हैं ना कि वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था। आप किसी के ऊपर रिलाय करते हुए एक्स्ट्रा वेट लेके आ जाए एयरपोर्ट पे और पता चले कि वो खुद भी नहीं है बल्कि आपको कोई पकड़ा दे कि आपने तो अंदर अफ्यून रखी हुई है, तो हाथ पांव ठंडे होते हैं ना। तो दुनिया में या तो ओवर वेट होकर या हराम के काम जमा करके किसी की आस पे लगे हैं तो वहां आके सब इनकार, इजहारे बरात, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं। सूरह यूनस आयत 28 और 29 में भी हम पढ़ चुके कि वो लोग कहेंगे कि तुम हमारी कब इबादत करते थे, हमने कब कहा। देखिए जो फौत जो हो चुका है अब उसकी कब्र पे रोज हजारों जायरीन जाएं या फलां जाएं या दिस एंड दैट जाएं, ये सब बताएं, क्या ये सब कुछ आता है? क्या वो ऐसे लोग उनको पता चलता होगा जो हमारी कब्रों पे कितने मेले लगे कितने लंगर खुले? कुछ नहीं पता। क्या आप अपने किसी फौतशुदा बुजुर्ग की कब्र पे चले जाएं तो उनको पता चलेगा आप आए हुए वहां? कैसे हो सकता है? ये तो एक पर्दा है बरजख का जो उनके और बीच में है। अब जब देखिए कि वो सारे बुजुर्गों ने तो इनकार कर दिया, अब इन मुशरिकों की हालत क्या होगी? आयत 87, वल कौलुल्लाहि यौम इज़्ज़िन सलम। ये दुनिया में कर लेते तो अच्छा नहीं था। जब देखेंगे कि हमारे बुजुर्ग और हमारे बड़े तो सारे हमसे बेजार हैं तो वो सब के सब उस रोज अल्लाह के हजूर फिर आजजी पेश करेंगे, आज अल्लाह से दोस्ती करेंगे, सुलह पेश करेंगे, सरेंडर करेंगे, खुद को आगे करेंगे, क्योंकि वह दल्लो अनहुम मा कानू यफ्तरून, इनके वकायद जो वो घड़ा करते थे वो सब गुम हो गए, माबूद तो सारे चले गए। जो इन मुकद्दस हस्तियों के बारे में इनके अकायद थे, इनके नजरियात थे कि वो हमें अजाब से बचा लेंगे, ये करेंगे, अल्लाह की पकड़ से बचा लेंगे, वो सब कुछ तो खत्म हो गया। तो जब वो कुछ नहीं है, इनके हाथों के तोते उड़ेंगे, तो उस वक्त इनको फिक्र लगेगी कि हम क्या करेंगे और क्या करते। तो आप सोचिए कि उस वक्त फिर वो किस तरह से अपने आप को परेशान करेंगे। उस वक्त उनको लगेगा कि यहां कोई कुछ नहीं है, तो क्या होगा ऐसे लोगों के साथ? आयत 88, अल्लज़ीना कफरू व सद्दू अन सबीलिल्लाह, वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रोकते रहे दूसरों को अल्लाह के रास्ते से। कैसे बंदा खुद कुफर करता है नशुक्री करके, दूसरों को कैसे रोकता है? आज लोग कुरान पढ़ने नहीं आते, किसी से पूछ लें लोगों को कुरान के लिए बुलाएं, नहीं आते। वे किधर जाते हैं? वो दूसरे कामों में जाते हैं। आप ही जैसे लोग मुझे बताते रहते हैं कि पार्टियां करते हैं तो बहुत लोग आते हैं, जब सालगिरहें करते थे तो बहुत लोग आते थे, ईद के नाम पे जब कॉन्सर्ट्स कराते थे तो बहुत आते थे, बस अब क्लास के लिए कहते हैं तो कोई नहीं आते। हमारी अपनी क्लास की स्टूडेंट नहीं है कोई, एक जगह मैं किसी और शहर में दर्स में थी तो वो सिस्टर ने बड़े इतफाक से लोगों को अपने घर में दर्स के लिए बुलाया। ये भी ईद के मौके की बात नहीं है कि चले हम आए हैं शहर में तो फायदा उठा लें, उन्होंने ईद का नाम लेके या दर्स का नाम लेके दर्स किया। यकीन करें कि उसी घर में मैं पहले किसी कमेटी पार्टी में जा चुकी हूँ, घर में जगह रखने तिल रखने की जगह नहीं, आप ये कह लें। इतने लोग थे और एक से एक माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, और उस दिन वो परेशान एंड वक्त तक 10 12 15 20 लोग टोटल, इतने भी। तो घर वाली बड़ी डिसहार्टेड थी, कहने लगे आज मेरा दिल टूट गया। और ये दिल सबका टूटता है जब नया नया दीन पे आता है ना, तो दोस्तों की इन हरकतों से दिल टूटता है तभी अल्लाह से जुड़ता है। कहती यही घर है कि जब मैं इनको वैसे बुलाती हूँ, आज अगर मैंने कोई ईद की पार्टी के नाम पे कोई शान फन शुगल रखा होता तो वो कितने लोग आते, और चूंकि उनको पता था दरअसल उन्होंने खाना भी अच्छा बनाया हुआ था कि ईद का भी मौका है, तो चलो तीसरा शायद दिन था ईद का या दूसरा चौथा ऐसे ही था कुछ दिन, तो किसी मुखसर को लोग नहीं आए। उसी में बैठी हुई औरतें यही बात कर रही थी आपस में खाने में, तो एक उन्हीं की बहू बेटी थी, कहने लगी कि मैं अपने घर में बच्चों के लिए अक्सर प्रोग्राम अरेंज करती रहती हूँ, उनका शुगल है। कहती इतने लोग आते हैं कि ये और वो दिस एंड दैट, और कहते हैं कि मैंने पिछले एक मौके पे मैंने सोचा कि बच्चों को बुलाती हूँ और साथ कुछ एक्टिविटीज और उनको फन के नाम पे, यानी जिसको आप कह सकते हैं वो लोग नहीं करते ईद मेला टाइप, कहती मैंने वो रखा, सिर्फ मैंने 5 पाउंड टिकट रखी, सिर्फ इसलिए कि मुझे पता चल जाए कितने लोग आ रहे हैं, जो मैं उनके गुड्डी बैग्स बनाऊं और एक्टिविटीज बनाऊं उसके लिए मुझे पता। कहने की आपको पता है कि कितने लोग आए? सिर्फ कहती है कि 5 बच्चे आए और 2 3 तो वो खुद ही थे और 1 2 लोग आए। और कहती है अंदर खाते मुझे कह रहे तुमने 5 पाउंड बहुत ज्यादा रखे हैं। और ये वो फैमिलीज हैं जहां मैं बैठी आपको बात कर रही हूं कि करोड़पति लोग हैं, खुद वो जो खुद इतनी अल्ट्रा मॉडर्न है, जो मुझे बात सुना रही थी, कहती आप बिलीव करें कि उस दिन उस प्रोग्राम में सिर्फ 5 बच्चे शो अप हुए, सिर्फ इसलिए कि मैंने 5 पाउंड टिकट रखा है, या वो फन के नाम पे नहीं है, एजुकेशनल है या इस तरह का। ये तो मिजाज है उम्मत का। फिर हम अल्लाह से किस सलूक की तवक्को रखते हैं? यही बात इधर कही जा रही है कि जब बाहर की इतनी चीजें अट्रैक्टिव हो जाती हैं, कशिश वाली होती हैं, तो रूखा फीका सूखा दीन लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो का जिद ना हो मजाबन फौकल अजाब, हम दुगना कर देंगे इनके अजाब को अजाब के ऊपर। क्यों? बीमा का दोन, क्योंकि वो फसाद जो करते थे, दुगना आप क्यों है? एक तो इनका अपना और एक दूसरों को रोकने का। हदीस में आता है मन दाल अल खैरी कफाने की को मूवी की 10 दफा सोचें कि मेरे इस एक जुमले पे अगर कोई चला गया वहां, या मेरे शौक दिलाने से, मेरी रगबत से, वो सारा बवाल मेरे ऊपर पड़ेगा। ऐसे भोले बन जाए गुनाह की महफिलों और ऐसी चीजों के ऊपर कि जिसको कभी जानते ही नहीं है, क्योंकि लोग आपके मुंह से गलत बात सुन के 10 दफा मानने को तैयार होंगे, 20 दफा आप उनको दीन की दावत दें तो सो जाते हैं। हम तो इतना सोते हैं रमजान के बाद, इतना गहरा सोते हैं कि अभी थकन ही नहीं हमारी पूरी हो रही, कि रमजान में नेकियां जो इतनी कर ली हैं तो ऐसे ज्यादा ही ना हो जाए, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नेक ना हो जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि दूसरों को रोकने का भी अजाब मिलेगा। हर बंदा अपने मुआशरे पे, अपने माहौल पे असर डाल रहा है, इसलिए फिक्र करने की जरूरत है कि अपने आप को हम चेक करें। मेरे कहने से लोग नेकी की तरफ आते हैं, या मेरे कहने पे लोग गुनाहों की तरफ आते हैं? और याद रखिए कि नेमतों को पाने के बाद दो किस्म के रवैये आते हैं, या तो कुछ जानते बूझते इनकार कर देते हैं, मानना ही नहीं चाहते, और बाज ऐसे हैं कि जो फिर समय नवातान अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में उनको नेकी करनी है, करनी है। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों को फिर वो अजाब है ना तौबा का मौका, अन चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे। ये वो लोग हैं कि कंटिन्यूस है, आप देखिए ना टेम्परेचर ऐसे होते हैं ना जो मुसलसल थर्मोस्टेट चलता ही रहता है, और कुछ होते हैं थोड़ी देर ऐसी हीट बंद होती है, फिर चलती है, फिर हीट है वो बंद है। इन आयतों को पढ़ें तो पता चलता है कि उनका अजाब चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इसलिए इन सारी बातों को सुन वक्त हम दुआ करें कि अल्लाह हमारे जरिए से किसी को दीन पे ले आ। अगर कल कयामत के दिन, और जरा तसव्वुर तो करो इस दिन का, जिस दिन हम हर उम्मत में खड़ा करेंगे एक गवाह, अलैहिम मिन अनफुसिहिम, इनके खिलाफ इन्हीं में से। ये मैं जान के रुकी हूं अलैहिम से पहले, अगर आप सिर्फ अलैहिम मिन अनफुसिहिम को हाईलाइट करके नीचे लिखें, इनके खिलाफ इन्हीं में से, तो खौफ नहीं आता? यानी ऐसी जैसे आप सबकी यहां दोस्ती है ना, तो आप ही में से किसी को आपके खिलाफ कयामत के दिन खड़ा हो जाए और आप में से दूसरी गवाही दे, ये थी जो मुझे सुनते वक्त डिस्ट्रैक्ट करती थी, ये थी जो मेरी तवज्जो इधर ले जाती थी, ये थी जो मुझे इधर उधर के मैसेज पास करता था और करती थी। आप खुद सोचें कि हम कयामत के दिन ऐसे दोस्तों की शक्ल देखने से बेजार हो जाएंगे, नफरत होगी हमें ऐसे लोगों से कि जिनकी वजह से हम अल्लाह के रास्तों को छोड़कर दूसरी तरफ पहुंचते हैं। कितनी शिद्दत है आप देखिए। सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 45 और 46 में आएगा, या युहन्नबी इन्ना अरसलनाक शाहिदं व मुबशिरं व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजं मुनीरा। कह नबी, यकीनन हमने आपको भेजा गवाही देने वाला। पहली सिफत अल्लाह के नबी की, गवाह। हमें एक लम्हे के लिए भी कभी इस गवाही का एहसास होता? मेरे खिलाफ अल्लाह के नबी ने गवाही देनी है या मेरे हक में देनी है? उम्मत का एक एक बंदा क्यामत के दिन अल्लाह के नबी की या तो गवाही के हक में या उसके खिलाफ असर से मुतासिर होगा। लोग तो नबी की शिफात के मुंतजिर होंगे ना, नबी तो शिकायतें लगाएंगे। सूरह फुरकान में आप पढ़ेंगे, इन हाज़ा कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ए नबी ये मेरी वो कौम है कि जिसने इस कुरान को छोड़ा हुआ था। तो फिक्र करने की जरूरत है। خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. کیا خوبیاں تھیں ہمارے نبی کی، اور آج ہم نے اپنی زندگی کہاں کھپا لی؟ سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم بھی اس گواہی میں شامل ہیں. کسی نیکی پہ انسان مان نہیں کر سکتا اپنی سوائے سے ایک نیکی کے، کہ کل قیامت کے دن اللہ کو جا کے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تڑپ سچی تھی، یہ فکر تھی کہ جو کام نبیوں نے کیا وہ ہم سے کرا لے، ہوا نہیں ہوا، حق ادا ہوا نہیں ہوا، کمی بیشی رہی یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ اس سوچ میں بڑے سچے تھے کہ اس بچھڑی ہوئی، اس کہنا چاہیے کہ اس بکھری ہوئی امت کو ہم ایک قوم بنا سکیں. سورہ مزمل میں یہ آیت ہم پڑھیں گے دوبارہ، آیت 15 میں، اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا، شاہدًا عَلَيْكُمْ، تمہارے خلاف، دیکھیے علی اگینسٹ ہوتا ہے اپوزٹ، تمہارے خلاف گواہیاں دے گا، کمار سلنا الى فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کو بھیجا تھا، وجینا بکا شہید ان لا ہاولائی، اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف. امیجن تو کریے کیا لگے گا اس وقت، آپ امیجن کریں خود کو، صرف آپ نے اکیلی میدان محشر میں، اور آپ عدالت میں مجرم کے کٹہرے میں کھڑی ہیں، اللہ کی ذات آپ کا حساب لے رہی ہے، اور اس وقت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں گواہ کے کٹہرے میں، سوچے ذرا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی آتے ہیں اور پھر آپ کے خلاف کہتے ہیں کہ اللہ یہ لڑکی بڑی خراب تھی، اللہ یہ میں کیا کروں، یہ میری امت کی تھی لیکن اس کی عقل ٹھکانے نہیں تھی. کیا کہیں گے اس دن؟ آپ کے اپنے باپ آپ کے خلاف گھر میں کسی وقت بولے نا، مجھے پتا ہے کہ جوان بچیوں کو بڑا برا لگتا ہے اگر اس وقت باپ کسی کے سامنے ان کو برا بھلا کہہ دیں، کسی کے سامنے ابو نے یہ کیوں کہا. قیامت کے دن کیا ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نامہ اعمال ہوگا؟ اسی کی تو فکر تھی علامہ اقبال کو، فارسی کے ان کے شعر ہیں کہ اللہ تو غنی ہے، تو میرا حساب نہ لینا قیامت کے دن، لیکن اگر نہ گزر ہو میرا حساب لیے بغیر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نام اعمال چھپا لینا، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرنا. ہم نے تو اللہ کے نبی کے بارے میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہے، ہم سوچتے ہیں چھوڑو کیا بڑی بات ہے، اس کی فکر کریں. جن سے محبت ہوتی ہے انسان ان کے سامنے کبھی رسوا نہیں ہونا چاہتا، اور جب ہم اللہ کے نبی کے سامنے رسوا ہوں گے تو کیا صرف اللہ کے نبی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت؟ اس وقت سب بڑے بڑے دیکھ رہے ہوں گے، بہت بڑے بنتے تھے ہم، بہت بڑے بنتے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر کم ہے. دنیا والوں کی نظروں میں تو ہم دوپٹہ نہیں سر پہ لیتے کہیں، کہتے نہیں پینڈو لگیں گے، نقاب نہیں لیتے ہائے لوگ ٹیررسٹ کہیں گے، ہائے ہم ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو ہم پاکستانی کپڑوں میں جائیں، مال میں جا رہے ہیں تو ہم عبایا پہن کے جائیں. کتنا غم ہے ہمیں دوسروں کی نظروں میں بڑا بننے کا، کہ کہیں چھوٹے نہ ہو جائیں. تو آپ بتائیے کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا معاملہ پیش کیا جائے گا، کیا دل نہیں چاہے گا کہ زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں؟ پھر اس وقت افسوس ہوگا، ہائے اللہ کے نبی ہمارے خلاف آ گئے، وجینا بک شہید ان لا ہاولائی، ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان کے خلاف. سورۃ نساء 41 میں تھا، فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہاولائی شہیدا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ اور آپ کو لائیں گے ان پر گواہ. اور قریش مکہ کا کیا حال ہوگا، رشتہ دار اپنے پیارے سب کے خلاف حجتیں ہوں گی قیامت کے دن، کہ اللہ میں نے تو پیغام دیا تھا انہوں نے مانا ہی نہیں، 13 سال تک میری پکار کو انہوں نے کوئی اہمیت نہ دی، پوری دنیا تک آج یہ پیغام اس امت کے ذریعے پہنچنا تھا جو امت سوئی ہوئی ہے، فرائض میں کوتاہی غفلت. تو پھر آج اگر اس کی سزا چند لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے تو پھر ہم چیختے بہت ہیں. یاد رکھیے مسلمان ہونا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اطاعت کا پھندا یا تو اس کو اتار کے پھینک دیں پھر جو سب کرتے ہیں وہ کریں. اگر ہمارا لائف سٹائل بھی وہی ہے جو غیروں کا ہے، اگر آج ہمیں بھی صرف وہی غم ہے جو کافر کو ہے، देखिए काफिर का गम क्या है, सर्वाइवल कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, इसी के लिए पूरा वेस्ट घूम रहा है। ये आप जॉब्स करते हैं जो पढ़ते हैं 10 10 20 20 साल ताकि कैरियर बना लें, तो जब एक काफिर को भी जो गम है वही मुसलमान का गम है तो फर्क किस बात का रह गया। अल्लाह ऐसे मुसलमानों की नबी के जरिए से सिफारिश कराएगा कि जिनको फिक्र थी रोटी कपड़े और मकान की, खाने और पीने की। आज उम्मत फराइज की कोताही के जुर्म में शिकार है, इतनी भारी इससे भारी वक्त क्या आएगा उम्मत मुस्लिमा पे जो आज आया हुआ। और आज भी हमारी गफला देखे, फजर में आज भी 20 25 लोग होते हैं मस्जिदों में, रातें हमारी जागती हैं और दिन हमारे सोते हैं। कोई हमारे फन को, हमारी पिकनिक है, को हमारी दावतें और खाने तो देखे। आज उम्मत ने बहुत बड़ी सजा दी दुनिया को, खुद इस्लाम पे ना रहकर। अल्लाह ने किबला तब्दील करवा दिया था उम्मत मुस्लिमा को परखने के लिए कि वह कजाली कजाल ना को मम्मतम वसतली तक वो शुहदालनास। आज फितने, झगड़े, मसले छोटी छोटी बातों पे, और रिस्क नहीं लेना चाहते। وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ। देख लीजिए गवाही के जिक्र के साथ कुरान का जिक्र है, और चार खूबियां इससे आधी आयत में कुरान की। क्या नबी, हमने उतार दिया आप पर ये किताब वजाहत करती हुई हर चीज की, और ये हिदायत, रहमत और बशारत बनकर आई है मुसलमानों के लिए। इंसानों की जिंदगियों के सारे मसाइल का हल कुरान, दुनिया का अमन कुरान में, दुनिया से जुल्म का खात्मा कुरान में, हिदायत, रहमत, बशारत ये सब इस किताब से मिलेगा। वो खूबसूरत किताब जो आज हमने खुद भी नहीं पढ़ी। कितनी सख्त मौत होगी इंसान की उस वक्त जब उसको मौत आए, और उस वक्त तक उसने अपनी किताब भी समझी नहीं है। इस किताब की फोम जो आपको जिंदगी में चाहिए अल्लाह ने इस किताब के अंदर रखा हुआ है। शर्त यह है कि कोई पढ़ने वाला हो, और कोई पढ़ाने वाला हो, कुछ समझने वाला हो। उंगली पकड़कर जीना सिखाती है ये किताब आज हमें, और हमें बस वक्त ही नहीं। पकाते रहते हैं, खाते रहते हैं, सोते रहते हैं, कमाते रहते हैं और खर्च करते रहते हैं। पूरे लफ्जों में उम्मत को देखे तो यही चार छह काम है आज हमारे। कोई और भी कर रहे होते हैं ना काम, चलो दीन कुरान नहीं पढ़े तो हम कुछ बैठ के कोई साइंस पढ़ते, कोई हम दुनिया को डिस्कवर करते, कोई करते तो बात भी समझ आती। चले गोरे नहीं पढ़ रहे कुरान तो वो कुछ दुनिया के भी तो अच्छे काम कर ही रहे हैं ना, सारे नहीं लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। हमारी उम्मत का तो आज हाल ये है कि तू मेरा नहीं बनता, अपना तो बन। आज तुम अपने भी नहीं है। देखिए इस दर्द को अगर आप अपने दिल में नहीं लेंगे ना, तो ये आयतें आपके ऊपर से गुजर जाएंगी। ये किताब जो मैं और आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप घर से निकले हैं इस वक्त, जिसके लिए आप निकल कर आए हैं, बैठे हैं, जाएंगे, ये वो आयत किताब है जिसकी अल्लाह कसम खा खा के कहता है कि लोगों ये किताब आम करो। कितने लोगों का ख्याल इस पे भी आता है, मुजाहरे, मनाजरे, बाइकॉट्स करो, लेकिन इस किताब के साथ अपना ताल्लुक तो जोड़ो। कभी भी आप और दूसरों को भी सब छोड़ दें, वापस आ जाएं हम सब इस हॉल में बैठे हुए लोगों पे, हमें तो अल्लाह ने इसके लिए चुना। फिर हमारी फुर्तियां क्या होनी चाहिए, हमारी कुर्बानियां क्या होनी चाहिए इस किताब के लिए, हमारा शौक, हमारा जौक, हमारे चेहरों से नूर टपके कि हमें इस किताब ने जीना सिखा दिया है, इस किताब ने हमारी रातों की नींदें उड़ाई हुई है। कहां रो रो के वीकेंड गुजरता है कि कहां जान छुटे इस वीकेंड से और वीक डेज में आके बैठे, कहां वीकेंड के बाद, वीक डेज के बाद इंतजार किया जाए। खुदा के लिए कोई चीज वीकेंड पे हो कि हम उसमें भी कुछ काम करें, ये तड़प नहीं है ना तो अभी दर्द नहीं लगा। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू क्यों आए थे अपने मसूद की बातें सुनकर? क्योंकि आपको पता था कि ये बहुत भारी कलाम है और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और आपको क्यामत के दिन नबी सल्लम इस बोझ से कांप रहे होंगे कि अल्लाह ने पूछना है सुनाओ उम्मत का हाल क्या था। फिर वो नाते और वो सारे शेर और वो बातें काम नहीं देंगी। अल्लाह अकबर। दुआ कीजिए अपने लिए कि अल्लाह तआला हमें इसकी तड़प दे रहे। कोई कुछ शेयर करना चाहता है? जी आप फिर से ना।
अभी अभी जो आपने खत्म की ना अपनी अपनी बात, कि कब ये वीकेंड खत्म हो, तो फीलिंग बता रही हूँ कि मेरे जैसी कोई 30 साल उठ नहीं सकती सुबह 7 बजे। आप यकीन करें 7 बजे की उठ के बैठी नहीं हूँ। इतनी ये शफा रहमत भी है, शिफा भी है, ताकत भी है।
इसके साथ
यस
जितना जुड़ेंगे जिंदगी
यस
खूबसूरत होगी।
जी
मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कहूंगी, इसके बगैर जिंदगी बेरूह है। लज्जत, मजा, खुशी कुछ नहीं मिलता जब तक ये किताब जिंदगी में नहीं आती। और जिन्होंने नहीं चखी उनको तो पता ही नहीं, हम तो चख चुके हैं। और ये भी याद रखें कि जिसके अपने दिल में उतरती है फिर वो बेचैन होता है दूसरों को उतारने के लिए, और जरूर अल्लाह उसकी बात में असर डालता है। अगर मेरे कहने पे कोई नहीं आता, मेरी बात कोई नहीं मानता, तो मुझे ही चेक कर दें अपने आप को, दूसरों को नहीं बुरा कहना। मेरे अंदर अभी वो तड़प नहीं है कि जो दूसरों के दिलों को हिला दे। जी ऑनलाइन से भी लिखिए या हम ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगली आयतें बहुत अहम है इसलिए उससे पहले आप लोग फ्रेश हो जाएंगे तो बेहतर, अच्छी तरह जज्ब करें। जी इशरत आप क्या सोच रही हैं? जी आप तीनों सब इधर आ जाएं, इधर ग्रुप लाइन में आ जाएं। जी
याद करना शुरू किया तो मुझे समझ नहीं थी कि मेरी सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गई थी माशाल्लाह, और मैं बिल्कुल फ्रेश थी।
यकीन करें हम खुद को सजा दे रहे हैं इस किताब से दूर रहकर, जिस रंग से भी दूर है। ऑफ कोर्स है, इसके बहुत सारे लेवल्स हैं ना, इसकी कदर ना करके हम खुद को सजाएं देते हैं। जी आप लोग ये ले ले माइक, कोई रस्मी बातें नहीं करें, एक एक बात ऐसी करेंगे जो दूसरों को फायदा भी दे और इस वक्त का हक भी अदा करें। और ये भी चाहें तो सबके सामने पढ़ दें। क़यामत के दिन अगर ये हमारा जुमला दूसरे सुने तो क्या होगा? जी चले
आज के लेसन से यही सीखा कि गर्म सुकून ढूंढने पाए कि जगह में नहीं।
जी और कोई कुछ कहना चाहते? जी आप प्लीज। अब देखिए कि जो तरबियत कुरान करता है, जो आज सबक के शुरू में जो बातें थी, क्या दुनिया का कोई हमें ऐसी नसीहतें देता है जो कुरान देता है? आज लोगों ने कुछ सुकून पा लिए कुरान को छोड़कर या इस्लाम को छोड़कर? जी अब
बातों से बात यही, फिर कुरान की क्लासेस का मैंने उनको बताया, अपनी तबीयत के हवाले से बताया, तो उनको भी यही लग रहा था कि शायद ये मेरा वो टर्निंग पॉइंट है कि जहां मुझे कुरान से या इन चीजों से जोड़ जाना चाहिए कि अब मुझे और कहीं सुकून नहीं मिल रहा।
جی, اور شکر کریں کہ دنیا میں سکون نہ ملے. جب دنیا میں سکون ملنے لگ جاتا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہوتی ہے. اللہ اس کو, آپ دیکھیں زخم ہے نا, جب تک جسم صحیح ہے تو زخم ہوتا ہے تو درد ہوتی ہے, لیکن مردہ کو اگر سوکھی چیز کے اوپر کوئی زخم کو چوٹ لگائیں تو درد نہیں ہوتی نا. تو انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کو زخموں کی درد ہوتی ہے, اور جب انسان اندر سے مردہ ہو جاتا ہے نا تو اس کو اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں میں بھی نہیں سمجھ آتا, کوئی اندر ہل جل نہیں ہوتی. یہ آن لائن سے ایک آدھا کمنٹ پڑھ لیتے ہیں. آئی ہیو اسٹارٹیڈ ٹو بیکم ویری کانشیس آف وٹ میسج آف دین اسلام, قرآن والوں کا میسج آئی ایم سینڈنگ ٹو ادرس. جی, کانشیسنیس کا نام یہ, آئی واز بورن وین آئی ٹچ دس قرآن, آئی واز اے نیو بورن. یعنی قرآن ایک نئی زندگی دیتا ہے, زندگی شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب واقعی قرآن زندگی میں آ جاتا ہے. آئی ایم دا فرسٹ ان مائی فیملی, آگے اور نہ لکھیے گا پلیز, بعد میں لکھیے گا, میں یہ پڑھتا ہوں ذرا. I am the first in my family whom Allah guided towards His path as now through Quran. May God is guiding them. یعنی یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے دین میں, اپنے فیملی میں پہلی ہوں جس کو اللہ نے قرآن کی طرف ہدایت دی ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نسلوں کو بھی اسی پہ لے چلے. تو بس اپنا محاسبہ کرتے ہیں, یا بریک لے لیجئے 15 منٹ کی, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ہم اگلا حصہ شروع کریں گے. جی
پوچھنا چاہ رہی تھی اس کا سیکنڈ پارٹ. فار ایگزامپل اگر کسی سے کوئی جاتی ہوئی ہے اور وہ آدمی دنیا میں نہیں رہا, یا آپ سے ہم اسے مل نہیں سکے ہیں اور آپ دل میں گرتی ہیں, آپ پچھتا رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں, ایک یہ چیز. اور دوسری یہ چیز کہ جو غیر مسلم ہیں, کیونکہ جو غیر سم ٹائم آپ کے جیسے جہاں پہ ادھر جانے والے جو ہیں ان کا انٹریکشن غیر مسلموں سے بھی ہوتا ہے, تو آپ جب ان کے ساتھ فرض کریں کہ ان کو کسی کو آپ نے ہرٹ کیا ہے یا کچھ غلطی ان سے آپ نے کچھ ان کے ساتھ غلط کیا, تو کیا دونوں کی جو بدلہ ہے وہ ایکول ہوگا؟ اور دوسرا ایک چیز کے جیسے آپ ان کے آپ نے یہاں پہ اگر توبہ کر لیں, استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, تو یہ بھی احسار کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حقوق اللہ معاف کروں گا, حقوق العباد جو ہے وہ کنترالی مقام پہ ہوگا, تو وہاں غیر مسلم اور مسلم کیا اکولی ہم لوگوں کو ان کی جو ہے دہی کرنی ہوگی کیا ہوگی؟
دیکھیں دو تین سوال اکٹھے ہیں آپ کے بیچ میں. پہلی بات یہ ہے کہ جو گناہ انسان چھوڑ چکا ہے اور اب آگے اصلاح کر چکے, اس کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اور امید بھی رکھے کہ اللہ آپ کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا, سیدھی سی بات ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ لوگ جو مر گئے یا ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے, ہم نے ان کی زیادتی کی ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ نمبر ایک, آپ ان کی طرف سے کثرت سے صدقہ دیں, ان کے لیے استغفار کی دعا کریں, اور ان کے بچے یا ان کی نسلوں میں کوئی ہے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. ایون اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اگر زندگی میں اچھا معاملہ نہ کیا ہو اور وہ دنیا سے چلے جائیں یا ناراضگی کی حالت میں جائیں, تو ان کے لیے بھی کثرت سے دعا اور صدقہ خیرات ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال یہ ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ جو معاملہ ہے, جو جس کے ساتھ جس درجے کی زیادتی کرے گا, اگر توبہ نہیں کی تو اللہ وہاں پکڑے گا, لیکن توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مالی خیانت ہے. مثال دے, صرف مثال دے رہی ہوں, کسی کمپنی ہے اس کو یہاں سٹورز ہوتے ہیں, آپ نے کسی کا واچر غلط چوز کر دیا, منی سے نقصان دیا, آپ اتنے پیسے ڈالے آپ ان کے نام پہ بھیج دیں, اب وہ کہاں جائیں ان کو بتا دیں کہ ایسا سم ٹائم ہوا تھا. یعنی مالی کمی کسی کی بھی, رشتے دار ہیں یا کسی کو آپ نے کوئی دھوکہ دیا, چوری کی, اس کی چیز اس کو واپس کرنی چاہیے جس حد تک ممکن ہے. کوئی صورت ہی نہیں مل رہی اس کو دینے کی, اس کی طرف سے صدقہ کر دیں اور ساتھ ہی تڑپتے رہیں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جنا کو معاف کر دے. باقی جتنا ہم آگے فیئر ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے معاملے آسان کر دے گا. ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ خیر. آپ لوگ پلیز جلدی سے بریک لیجئے اور پھر واپس ملتے ہیں. جی آن لائن پہ ہولڈ کیجئے مائک پلیز.
اللهم لك الحمد.